अखिल, तुम्हें पता है, इस वक्त कुछ करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा। न जाने क्यों, बस दिल कर रहा है तुमसे बात करते रहूं। रैना की आवाज में एक अजीब सी खुमारी थी। अखिल ने पेन उंगलियों के बीच घुमाते हुए मुस्कुराकर कहा, तो फिर ये कौन सा रूल है कि ऑफिस में सिर्फ काम ही होना चाहिए? कभी कभी काम से ज्यादा जरूरी बातें भी होती हैं, और तुम्हारे साथ की बातें तो हमेशा टॉप प्रायोरिटी होती हैं। संजय ने फाइल बंद करते हुए चुपचाप अखिल को देखा। उसके चेहरे पर अब वही मुस्कान थी जो अक्सर किसी की डायरी के सीक्रेट पेज पर ही मिलती है। संजय ने मन ही मन सोचा, ये सब बातें क्या मुझे यहां बैठकर सुननी चाहिए? लेकिन अगर मैं उठा और सर ने नोटिस कर लिया तो बुरा मान जाएंगे। रहने दो, ऐसे ही चुप बैठा रहता हूँ। फोन के उस पार से रैना ने खिलखिलाकर कहा, तुम्हें पता है, तुम्हारी मूड को देखकर लगता ही नहीं कि तुम वही अखिल हो जिसकी इमेज इतनी स्ट्रिक्ट और प्रोफेशनल है। सच बताओ, क्या ये वाला अखिल सिर्फ मेरे लिए रिजर्व है? अखिल ने हंसते हुए कुर्सी की आर्मरेस्ट पर हाथ टिका दिए। बिल्कुल, ये वाला अखिल सिर्फ तुम्हारा है। बाकी दुनिया तो वही देखती है जो मैं उन्हें दिखाना चाहता हूँ, कढ़ाई, बिजनेस, डिसिप्लिन, लेकिन असली मैं बस तुम्हारे सामने हूँ। रैना की आवाज हल्की सी धीमी हुई। तो फिर इस असली अखिल को हमेशा मेरे सामने ही रखना, कहीं खो मत देना, क्योंकि सच कहूं तो मुझे इसी रूप से मोहब्बत है। संजय ने सामने रखे कागजों पर नजर डालने का दिखावा किया, लेकिन उसके कान वहीं टिके थे। वो मन ही मन सोच रहा था, वाह, इतना बड़ा बिजनेसमैन जिसकी एक एक मीटिंग लाखों की डील तय करती है, आज फोन पर किसी के सामने यूं पिघल रहा है। लगता है सचमुच रैना ही सर की असली ताकत है। अखिल ने थोड़ी देर चुप रहकर कहा, रैना, अगर मैं तुम्हें ये कहूं कि मेरी पूरी दुनिया इन दिनों तुमसे शुरू होकर तुम पर ही खत्म होती है, तो तुम मानोगी? मान लूंगी, रैना ने चौंकते हुए हंसकर कहा। अखिल, मैं तो ये चाहती हूं कि तुम यही रोज रोज कहो। पता है, जब तुम ऐसे बोलते हो तो मुझे लगता है जैसे सारी थकान, सारी डर कहीं गायब हो जाते हैं। अखिल की आंखें चमक उठी। उसने बड़ी सहजता से कहा, फिर तो ये काम रोज का ही बना लो। मैं भी चाहता हूं तुम्हारी हंसी हमेशा ऐसे ही सुनता रहूं। संजय ने हल्का सा गला साफ किया, जैसे खुद को याद दिला रहा हो कि वो भी कमरे में मौजूद है। लेकिन अखिल इतना डूबा हुआ था कि उसे संजय की उपस्थिति का ख्याल ही नहीं आया। रैना की आवाज फिर आई, वैसे बताओ, आज लंच किया या नहीं? मुझे शर्त है तुमने फिर से काम में बिजी होकर मिस कर दिया होगा। अखिल ने मासूमियत से कहा, तुम्हें कैसे पता चल जाता है हर बार? सच तो यही है कि मीटिंग्स की वजह से आज लंच स्किप हो गया, लेकिन तुम्हारी आवाज सुनकर लग रहा है जैसे किसी ने दावत दे दी हो। अखिल, रैना हंसते हंसते बोली, तुम भी ना, हर बात में मुझे घुमा देते हो। पर सुनो, आज मैं जिद करूंगी, शाम को तुम सही से खाना खाओगे और मेरे साथ। अखिल ने तुरंत जवाब दिया, ठीक है मैडम, आपकी बात टालना मेरे बस में नहीं। संजय फिर मन में बुदबुदाया, ये वही सर हैं जो सुबह मीटिंग में एक मिनट की देरी पर पूरा डिपार्टमेंट हिला देते हैं, और अब किसी के सामने इतने मासूम बनकर बैठे हैं। रैना सचमुच उनकी लाइफ में चमत्कार ले आई है। अखिल ने अचानक गंभीर होकर कहा, रैना, मुझे तुमसे एक बात पूछनी थी। कभी लगता है कि ये सब बहुत जल्दी हो रहा है? मतलब हमारी बातें, हमारा रिश्ता, सब कुछ जैसे तेज रफ्तार में भाग रहा है। रैना थोड़ी देर चुप रही, फिर शांत स्वर में बोली, हाँ, कभी कभी लगता है, लेकिन फिर सोचती हूँ, जब दिल साफ हो, इरादे सच्चे हों, तो टाइम क्यों मायने रखे? मुझे तो बस इतना पता है कि मैं तुम्हारे साथ खुश हूँ। अखिल की सांसें गहरी हो गईं। उसने धीरे से कहा, तो फिर मैं भी टाइम की परवाह नहीं करूंगा। जो पल अभी हमारे पास हैं, उन्हें पूरी तरह जीना है। रैना की आवाज में एक नई चमक आ गई। बस यही चाहिए अखिल, हर पल साथ, हर मुस्कान साझा। संजय ने अब सर झुका लिया ताकि उसकी आंखों के भाव छुप जाएं। उसे लग रहा था जैसे वो किसी प्राइवेट दुनिया में जबरन घुसाया हो। लेकिन फिर वही सोच, सर ने जाने को नहीं कहा है, अगर मैं उठा तो शायद उन्हें बुरा लगे। फोन पर थोड़ी देर हल्की फुल्की बातें और हुई, कभी मौसम का जिक्र, कभी पुरानी यादों का, कभी आने वाले दिनों की प्लानिंग का, और आखिर में अखिल की आवाज और भी नर्म हो गई, रैना, शाम को मैं खुद लेने आऊंगा, इसलिए बस या ऑटो वगैरह करने की जरूरत नहीं है, समझी? रैना मुस्कुराकर बोली, ठीक है बॉस, जैसा आप कहें। अखिल ने हौले से कहा, तो तय रहा, शाम हमारी। फोन कट गया। कमरे में कुछ पल के लिए खामोशी छा गई, लेकिन उस खामोशी में भी अखिल के चेहरे पर वही चमक थी जो अभी तक रैना की आवाज के साथ जुड़ी रही थी। संजय ने धीरे से फाइल उठाई और मन ही मन कहा, शायद आज पहली बार समझ आया कि सर के लिए बिजनेस से भी बड़ी चीज कोई है, और वो है रैना, की नजर से उनका रिश्ता भी दिखाया जाएगा। अखिल, दरवाजा अचानक खुला और यशवर्धन जी अंदर आ गए। अखिल जो अभी तक मुस्कुराते हुए किसी से फोन पर बात कर रहा था एकदम सीधा बैठ गया। उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई और उसने झटके से फोन काट दिया। पिताजी आप यहाँ? उसकी आवाज में हल्की झिझक थी। यशवर्धन जी ने गौर से अपने बेटे को देखा। हाँ बेटा, जरा अर्जुन के काम का मामला था, सोचा तुमसे ही कह दूं। एक प्रोजेक्ट में उसकी कुछ फाइलें हैं, तुम देख लेना, तुम्हें ऐसे कामों में ज्यादा समझ है। अखिल ने सिर झुकाकर छोटा सा जवाब दिया। ठीक है, मैं देख लूंगा। कमरे में कुछ पल चुप्पी रही, फिर यशवर्धन जी ने जैसे कैजुअली कहा, कभी कभार अपनी माँ से मिलने घर भी आ जाया करो, उसे अच्छा लगेगा। अखिल ने पेन मेज पर रखा और ठंडी आवाज में बोला, पिताजी इस वक्त मेरे पास टाइम नहीं है, आप जानते हैं रैना की देखभाल करनी होती है, उससे ज्यादा वक्त कहीं और नहीं दे सकता। यशवर्धन जी ने उसकी आंखों में सीधे देखा। बेटा रैना की देखभाल तो तुम रोज करते ही हो, पर कभी अपने पिताजी अपनी माँ की भी देखभाल कर लिया करो। घर सिर्फ दीवारों से नहीं बनता, उसमें अपनों का आना जाना जरूरी होता है। ये कहते हुए उन्होंने अपनी नजरें फेर ली। उनकी आवाज भले ही ठंडी थी, लेकिन संजय जो कोने में बैठा था साफ समझ गया कि इन बातों में छुपी हुई चाहत कितनी गहरी थी। संजय मन ही मन सोच रहा था, ये सर यानी यशवर्धन जी तो साफ तौर पर ये नहीं कह पा रहे कि वो अपने बेटे से मिलना चाहते हैं। माँ का नाम लेकर बुला रहे हैं, लेकिन असल में तो वो खुद अखिल से बात करना चाहते हैं। अफसोस, पिता और बेटे के बीच ये दूरी कितनी अजीब है। अखिल ने अपने पिताजी की बात का कोई जवाब नहीं दिया, उसके चेहरे पर वही सख्त भाव लौट आए। यशवर्धन जी ने गहरी सांस ली और बस इतना कहते हुए निकल गए। ठीक है बेटा, काम देख लेना, मैं चलता हूँ। दरवाजा धीरे से बंद हुआ, कमरे में फिर वही खामोशी फैल गई। संजय ने चुपचाप अखिल की तरफ देखा, एक तरफ उसका सख्त और रूखा रवैया, दूसरी तरफ एक पिता की अनकही तड़प। काश अखिल सर समझ पाते कि उनके पिताजी कितनी कोशिश से बस दो शब्द उनसे बात करना चाहते हैं, संजय ने मन ही मन सोचा।